आई जस्ट हेट चाइल्ड। ये सब देखकर आस्था पूरी तरह से डर गई थी। वहीं वंशिका भी डरते डरते थोड़ा सा घबराते हुए बोली, बाबा ये सब क्या है? तब प्रशांत जी कुछ पल रुके और उन दोनों को सीरियस एक्सप्रेशन से बोले, आप दोनों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, और ये जो कंकाल है ये मैंने लीगल तरीके से ही लिए हैं, सो डोंट वरी, इनके लाइसेंस तक मेरे पास है। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट्स मुझे काफ़ी कुछ कहानी बयां कर रही हैं। जो रिपोर्ट तुमने मुझे दिखाई है उसमें कुछ तो ऐसा है जो मेरी नज़रों से छुपा हुआ है, और वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में चेक करने के बाद ही बता सकता हूँ। अब तो शक की आशंका और बढ़ती जा रही थी। आस्था परेशान मन से सोचने लगी, आखिर उसके पति को ऐसा क्या हो गया है कि इतने बड़े जीनियस प्रोफेसर भी सही से कुछ बात नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें अपनी सीक्रेट लैब में आना पड़ा। फिलहाल प्रोफेसर प्रशांत ने जल्दी ही उन दोनों को सामने एक जगह बैठने का इशारा किया और फटाफट से अरमान का ब्लड लेकर कई जगह स्लाइड्स बनाकर टेस्ट करना शुरू कर दिया था। पूरे 30 से 35 मिनट उन्होंने जांच करने में लगाए। इस बीच ध्रुव और आहान, इतना ही नहीं सुमित और आकाश का लगातार वंशिका और आस्था को फ़ोन आ रहा था, लेकिन वो दोनों फ़ोन पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे क्योंकि इससे प्रोफेसर प्रशांत डिस्टर्ब हो सकते थे। वहीं वो चारों पूरी तरह से परेशान हो उठे थे क्योंकि इस वक्त वो चारों न सिर्फ एक साथ थे बल्कि अपने सभी आदमियों के बीच मौजूद थे, और उन्होंने अपने आदमियों को शहर भर में फैला दिया था ताकि फटाफट ये पता चले कि आखिर किसको ये पता चला था कि अरमान इस तरह से नाइजीरिया जाने वाला है। कहीं ना कहीं जितने भी अरमान के दुश्मन उस वक्त फ्लाइट लेकर गए थे उन सबकी डिटेल्स कलेक्ट की जा रही थीं। उन्हें यकीन था कि अरमान पर हमला करने वाले का कोई ना कोई सुराख इन्हीं से ज़रूर मिलेगा, और इसलिए वे पूरी तरह से छानबीन कर रहे थे। साथ ही साथ सब ये भी सोच रहे थे कि वंशिका और आस्था तो सेफ हैं या नहीं, क्योंकि आस्था पहली बार बिना सिक्योरिटी के बाहर निकली थी। हालांकि उन्होंने मारिया को मैसेज छोड़ दिया था कि वो आस्था को सिक्योरिटी दे। इतना ही नहीं, मारिया को जैसे ही ये मैसेज मिला कि इस वक्त उसकी क्वीन बिना सिक्योरिटी के बाहर निकली है, तो वो पूरी तरह से हरकत में आ गई थी। भले ही अरमान ने उसे कोई काम करने से मना कर दिया हो, लेकिन मारिया इस तरह से बेफिक्र कैसे रह सकती थी। जब आस्था और वंशिका ने मारिया के लगातार कॉल नहीं उठाए बल्कि केवल उसके मैसेज का ही रिप्लाई किया, तो वो थोड़ी परेशान हो गई। ध्रुव को भी यहाँ मजबूरी में मारिया को मैसेज डालना पड़ा कि वो जाए और आस्था को सिक्योरिटी दे, क्योंकि अगर अरमान पर हमला हुआ है तो आस्था पर भी हमला होने की संभावना हो सकती है, इसलिए आस्था की सिक्योरिटी को लेकर वो कोई भी चूक नहीं करना चाहते थे। फिलहाल ये आदेश पाते ही मारिया ने फटाफट से आस्था की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दी। मारिया खुद एक हैकर थी जो अच्छी तरह से सब चीज़ों पर कंट्रोल कर सकती थी। फिलहाल वो सीधा प्रोफेसर प्रशांत के घर जाकर अंदर कमरे में बैठ गई थी, फिर आस्था और वंशिका का आने का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी ओर अरमान टाइगर के साथ जल्द ही घर पहुंच गया था, और वो फटाफट से मारिया को अब काम देना चाहता था क्योंकि टाइगर ने उसके दिमाग में डाल दिया था कि मारिया ही ऐसी शख्सियत है जो आसानी से किसी को भी खोज सकती है। अब अरमान ने सोचा कि क्यों ना उस एंग्री बर्ड्स यानी आस्था के पति को खोजने का काम मारिया को ही दिया जाए। अगर मारिया उसके पति की तलाश करेगी तो बहुत जल्द उस लड़की का पति मिल जाएगा, और फिर वो लड़की यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। फिलहाल अब जैसे ही अरमान घर के अंदर आया, अचानक उसने देखा कि अंश जोर जोर से रो रहा था। अंश हॉल में बुरी तरह से रो रहा था, ना तो वो राधिका के पास और ना ही रौनक के पास चुप हो रहा था, बाकी चारों लड़के भी वहां मौजूद नहीं थे। दादाजी, अभिमान जी और नानी माँ सबके सब अंश को चुप कराने में लगे हुए थे, लेकिन अंश को वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिछले 15 दिनों से वो केवल आस्था के साथ ही रह रहा था, इसलिए उसे आस्था की आदत हो गई थी। पहले वो सबके साथ आसानी से खुल मिल जाता था, लेकिन अब 15 दिन में उसका नेचर बदल चुका था। उसे केवल आस्था ही अपने पास चाहिए थी। आस्था के बिना वो रो रोकर परेशान कर रहा था, ना तो किसी खिलौने से चुप हो रहा था और ना ही भूख लगने पर भी कुछ खा रहा था। उसे इस हालत में देखकर सब लोग काफी परेशान हो गए थे। आज अंश के रोने की आवाज अरमान को पूरी तरह से परेशान कर रही थी। उसने तुरंत ही थोड़ी कड़क आवाज में सबका ध्यान खींचा। ये यहाँ क्या हो रहा है, और ये बच्चा इस तरह क्यों रो रहा है? इसकी माँ कहाँ है? उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? अरमान, जो कि दोपहर के वक्त घर जल्दी पहुंचा था, वो वहां अचानक आया और इस तरह से बातें करने लगा तो सभी लड़कियां एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगी, क्योंकि आस्था तो पहले ही जा चुकी थी। अब अंश को कौन चुप करवाएगा? राधिका, रौनक या किसी और से भी वो चुप नहीं हो रहा था। वसुंधरा और वीर, जो नौकरों के साथ खड़े हुए थे, अब अरमान के आने पर वो चुपचाप वहां से खिसक गए, क्योंकि दादाजी ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि जब भी अरमान सामने हो तो तुम लोग उसके सामने आना अवॉइड किया करो, वरना वो कब क्या कर बैठे इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। फिलहाल अंश के इस तरह रोने की आवाज़ सुनकर अरमान पूरी तरह से इरिटेट हो गया। भले ही अरमान की दिमागी यादें मिटा दी गई हों, लेकिन उसका दिल अंश को रोता देख बिल्कुल भी चैन नहीं ले पा रहा था। वो चाहता था कि अंश तुरंत चुप हो जाए। उसकी फीलिंग अंश के लिए बेहद उलझी हुई थी। तभी नानी माँ ने अरमान को एकदम से संभाल कर जवाब दिया, उसकी माँ किसी काम से बाहर गई है, उसे आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अंश तो हमेशा हमारे पास ही रहता है, कभी इस तरह से नहीं रोता। पता नहीं आज इसे क्या हो गया है, शायद ये अपनी माँ के बिना चुप नहीं होगा। पिछले 15 दिन वो हम सबसे दूर रहा है ना, शायद इसी वजह से हमसे चुप नहीं हो रहा है। नानी माँ की ये बात सुनकर अरमान ने उनकी ओर गुस्से से देखा और तमतमाते हुए बेपरवाही से बोला, मुझे आपसे किसी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। और वैसे भी आपको ही बहुत शौक है बेटियाँ बनाने का। क्या आपकी 3-3 बेटियाँ कम थीं कि आपने एक चौथी बेटी भी अपने घर में जोड़ ली? सबको अपनी बेटी बनाने का ये नया काम खोज रखा है आपने? जैसे ही अरमान ने थोड़ी बदतमीजी से ये बात कही तो वहाँ का माहौल और भारी हो गया। वहीं दादाजी को नानी माँ के खिलाफ ये शब्द सुनकर गुस्सा आ गया था और उनकी आंखें एकदम से सख्त हो गईं। वो झल्लाते हुए अरमान पर भड़के, अच्छा तू तो इस तरह से बोल रहा है जैसे तू बहुत बड़ा 30 मार खां है। तू तो 1 मिनट में बच्चों को चुप करा सकता है। अगर तुझ में हिम्मत है तो इस बच्चे को चुप करा के दिखा। अगर बच्चे को चुप कराने की थोड़ी बहुत हिम्मत और ताकत है तो दिखा। अब जैसे ही दादाजी ने बातों ही बातों में अरमान को चैलेंज दिया तो अगले ही पल अरमान भी जोश में आ गया था और वो अपनी आंखें सख्त करते हुए जल्दी से बोला, अच्छा आपको क्या लगता है जिसके सामने बड़े बड़े लोग जुबान नहीं चला पाए वो अपना मुंह तक बंद कर लेते हैं, क्या उसके सामने एक मामूली सा बच्चा यूं ही रोता रहेगा? 1 मिनट अभी रुकिए, मैं अभी इसे चुप करवाता हूँ। ये बोलकर अरमान जल्दी से आगे बढ़ा और उसने राधिका की गोद से अंश को ले लिया और अंश की ओर देखते हुए बेहद कड़क अंदाज में बोला, ए बच्चे चुप हो जा, तेरी आवाज़ मेरे कानों को डिस्टर्ब कर रही है।
अब जैसे ही अरमान ने इस तरह से बात की, राधिका और दादाजी ने तुरंत अपने सर पर हाथ मार लिया था, क्योंकि अरमान अंश को चुप कराने की जगह इस तरह उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था मानो जैसे कोई नौकर को आदेश दे रहा हो। लेकिन अरमान की गहरी आवाज़ सुनने के बाद अंश एक बार फिर बुरी तरह से रोने लगता है। अब अंश की जोर जोर से रोने की वजह से अरमान के कानों में झुनझुनाहट पैदा हो गई और उसने तुरंत ही अपने हाथों की उंगलियां कानों में डालकर कसकर बंद कर ली और झल्लाकर बोला, आई जस्ट हेट चाइल्ड। लेकिन अचानक ठीक उसी वक्त अरमान की गोद में आने के बाद अंश ने उसी पर सूसू कर दिया। अब ये महसूस करते ही अरमान पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन दादाजी और साथ ही साथ अभिमान राधिका रौनक के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वे अपना मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। वहीं अरमान अंश को घूरकर सर पकड़ते हुए झट से बोला, आई जस्ट हेट बच्चे, ये बच्चे पैदा ही क्यों होते हैं, बच्चों को पैदा ही नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए उसने अंश को नानी माँ के पास दिया और वो खुद अपने कमरे की ओर भागा, क्योंकि उस वक्त अरमान का महंगा सूट पूरी तरह से अंश के सूसू से भीग चुका था। अरमान को इस तरह जाते हुए देखकर सभी लोगों की हंसी निकल पड़ी। उस वक्त टाइगर के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिलहाल अंश को हंसते देख नानी माँ तपाक से बोली, अरे ये तो अब चुप हो गया, लगता है इसको सुसु ही करना था लेकिन कर नहीं पा रहा था, शायद दामाद जी की कड़क आवाज़ सुनकर इसका सुसु निकल आया, सुबह से ये सुसु ही नहीं कर पा रहा था, शायद इसी वजह से ये रो रहा था। अब जैसे ही नानी माँ ने इस तरह मजाकिया अंदाज में ये कहा तो वैसे ही बाकी सबकी हंसी जोर से छूट पड़ी। राधिका और रौनक तो पूरी तरह से लोटपोट हो गई थी। लेकिन तभी राधिका अपनी हंसी रोकते हुए बोली, इसको मुझे दीजिए, और वो अंश को लेकर उसके कपड़े बदलने चली गई। वहीं दूसरी ओर अरमान सीधा अपने कमरे में चला गया। जिस तरह अंश ने उस पर सूसू कर दिया था उसे उस वक्त अंश बहुत इरिटेटिंग लग रहा था और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, ये बच्चा, ये मामूली सा बच्चा इस तरह से मेरे ऊपर सूसू कैसे कर सकता है। ऐसा बोलकर वो जल्दी से वॉशरूम में गया और फटाफट शावर लेना शुरू कर दिया। शावर लेने के बाद जब वो तैयार हुआ तो गुस्से से सोचने लगा, एक बार इसकी माँ आ जाए फिर मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाता हूँ। क्या उसने अपने बच्चों को तमीज़ नहीं सिखाई? क्या उसे अक्ल नहीं है कि बच्चों को कैसे पालना है? क्या उसका बच्चा इस तरह से पूरे घर में सूसू करता फिरेगा? इस लड़की को अक्ल ही नहीं है, वैसे तो बड़ी एंग्री बर्ड्स बनकर घूमती रहती है। ये बोलकर अरमान ने मुँह सिकोड़ा, फिर अचानक वो एक पल के लिए रुका और कुछ सोचते हुए खुद से बुदबुदाया, ये मुझे क्या हो गया है, मैं इतनी ज़्यादा बातें क्यों कर रहा हूँ, वॉट इज़ दिस। कहीं न कहीं अरमान पूरी तरह से कन्फ्यूजन का शिकार हो चुका था। अरमान के सीने में गुस्सा भड़क रहा था। अब वो फटाफट से बाहर निकला और टाइगर को स्टडी रूम में बुला लिया और उससे बोला, मारिया को लेकर आओ। अब जैसे ही टाइगर ने ये सुना वैसे ही उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले अरमान जब वॉशरूम गया था टाइगर सबसे पहले अपने रूम में आया था, क्योंकि वो वहां जाकर मारिया को देखना चाहता था कि मारिया कैसी है। लेकिन मारिया उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी। उसने फटाफट से मारिया को मैसेज किया तो मारिया ने उसे रिप्लाई किया, इस वक्त वो क्वीन की सेफ्टी के लिए गई थी। ये सुनकर टाइगर पूरी तरह से घबरा गया कि अब वो अरमान को क्या जवाब देगा। अरमान ने जब गुस्से में पूछा, मारिया कहाँ है, तो टाइगर झूठ नहीं बोल पाया और उसने सादगी से जवाब दिया, किंग, मारिया क्वीन की सेफ्टी के लिए गई है। अब जैसे ही अचानक टाइगर ने आस्था को क्वीन कहा तो वैसे ही अरमान के माथे पर बल पड़ गए। टाइगर के जवाब ने अरमान को बेचैन कर दिया और उसने टाइगर से सीधे सीधे पूछा, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो। ये शब्द सुनते ही टाइगर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, मारिया इस वक्त घर पर नहीं है, वो आस्था और वंशिका के साथ उनकी सेफ्टी के लिए गई है, ये सुनकर एक पल में अरमान की आंखें कठोर हो गईं और वो टाइगर से बोला, मेरी सिक्योरिटी छोड़कर उन दोनों लड़कियों की सेफ्टी के लिए मारिया वहां गई है, व्हाट इज दिस? उसकी आवाज पूरी तरह से गुस्से से कांप रही थी और स्टडी रूम से उसकी आवाज बाहर हॉल तक सुनाई दे रही थी। तो अब कहीं ना कहीं सबको लगने लगा कि अंश के सूसू करने की वजह से ही अरमान का इतना ज्यादा गुस्सा में है।